ओम शांति। संडे अव्यक्त मुरली 23 सितंबर 2018 की। इस मुरली को हम 6 भागों में विभाजित करेंगे या फिर 6 भागों में रिवाइज करेंगे। एक है मुख्य मुरली और उसके बाद है 5 मुख्य प्रश्न। एक एक प्रश्न पर एक एक क्लास हो सकता है, इसलिए इस मुरली को 6 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो आज हम लेंगे प्रश्न नंबर 4। ब्लेसिंग जो बाप दादा द्वारा मिलती है उसका गलत प्रयोग क्या है? प्रश्न नंबर 4 है, ब्लेसिंग जो बाप दादा द्वारा मिलती है, जो वरदान हमको बाप दादा द्वारा मिलते हैं उसका गलत प्रयोग क्या है? और ये जो 5 प्रश्न है ये एक दूसरी मुरली से लिए हुए हैं और उस मुरली की डेट है 24/2/84 और वैसे जो मुख्य मुरली है उसकी डेट है 18 जनवरी 1984, पर जो 5 प्रश्न लिए हुए हैं वो 24/2/84 की। तो आज हम लेंगे प्रश्न नंबर 4। प्रश्न है, ब्लेसिंग जो बाप दादा द्वारा मिलती है उसका गलत प्रयोग क्या है? बाबा के द्वारा जो वरदान मिलते हैं उसका गलत प्रयोग क्या है? एक युवक होता है जो कि विज्ञान में बहुत रुचि रखता है और एक तरीके से वैज्ञानिक ही होता है, परंतु उसके पिता उससे बहुत नाखुश होते हैं और उसको कहते हैं, वैज्ञानिक बनकर तुम कमाओगे क्या? तुम्हें वैज्ञानिक नहीं, तुम्हें डॉक्टर बनना चाहिए। वो कहते हैं, नहीं मुझे तो संशोधन करना है, परंतु पिता नहीं मानते और उसे जबरदस्ती डॉक्टर बना देते हैं। तो जब वो डॉक्टर बन जाता है तो उसकी आदत होती है कि जब भी कोई मरीज आएगा तुरंत अपनी किताब खोलना और फटाफट जो बीमारी है उसके विषय में पढ़ना और उसका इलाज उसमें ढूंढना और जैसा उसमें लिखा है वैसे करना। तो एक बार एक पेशेंट आता है, एक मरीज जिसको निमोनिया हो गया होता है, तो वो पेशेंट का निदान करता है और फिर कहता है, रुको अब बैठो, और अपनी किताब खोलता है और उसमें सब कुछ पढ़ता है और बहुत ही निराशाजनक स्वर में कहता है कि बहुत मुश्किल है, तुम नहीं बच सकते, तुम्हारा मरना निश्चित है। तो मरीज बहुत ही दुखी हो जाता है और चला जाता है। और फिर 2 हफ्ते के बाद ये डॉक्टर उस मरीज से मिलता है मार्केट में, तो कहता है, अरे तुम जिंदा हो, तुमको तो मर जाना चाहिए था, तुम्हारी बीमारी इतनी घातक थी। वो कहता है, हाँ सोचा तो मैंने ही ऐसा था, मैंने भी ऐसा ही सोचा था कि आपने कहा मैं मर जाऊंगा, फिर मैंने सोचा क्यों ना मरने से पहले अपनी जितनी इच्छाएं हैं वो सारी पूरी कर लूं। तो मेरी एक इच्छा थी पकौड़े खाने की, तो मैं गया और 32 पकौड़े एक साथ खा गया, और जैसे ही मैंने पकौड़े खाए उसके बाद में एक नई ऊर्जा मेरे शरीर में संचारने लगी और मैं एकदम ठीक हो गया। तो डॉक्टर ने उसके तरफ देखा और कहा, अच्छा, और वो अपने घर गया, अपनी डायरी निकाली और उसमें लिखा कि निमोनिया का इलाज मिल गया है, 32 पकौड़े खाने के बाद व्यक्ति ठीक हो जाता है। और ये जो मरीज था वो दर्जी था, एक टेलर था। कुछ समय के बाद एक दूसरा मरीज आता है, वो मोची होता है, शूमेकर, उसको भी निमोनिया हो गया होता है। तो ये डॉक्टर कहता है, डरने की कोई बात नहीं, इलाज मिल चुका है, 32 पकोड़े जाके सीधा जाके 32 पकोड़े खाओ। मोची जाता है, 32 पकोड़े खाता है। उसके कुछ समय के बाद फिर डॉक्टर उसके घर जाता है मिलने के लिए, तो कोई दरवाजा नहीं खोलता। पड़ोसी कहते हैं, क्या हुआ? पड़ोसी उसको पूछता है क्या हुआ, पड़ोसी कहता है वो तो मर गया, पता नहीं उस दिन उसने बहुत सारे पकौड़े खाए थे उसके बाद में वो मर गया। तो डॉक्टर अपने घर जाता है, लिखता है निमोनिया का इलाज से 32 पकौड़े खाने से एक दर्जी बच सकता है, परंतु यदि कोई मोची खाए तो नहीं बचेगा। तो ये जो थिंकिंग है, विचारधारा, इसे कहा जाता है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, जहां माइंड, मन केवल थियोरीज को जानता है और थियोरीज पर चलता है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कुछ भी नहीं है। और जो निष्कर्ष मन निकालता है वो निष्कर्ष भी इसी आधार पर निकालता है, कोई ठोस आधार नहीं होता है, और जो भी सोचता है वो इसी तरह से गलत गलत होते जाता है। तो इसी आधार पर आज का ये प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4, ब्लेसिंग जो बाप दादा द्वारा मिलती है उसका गलत प्रयोग क्या है? बाबा ने उत्तर दिया है, कभी कभी जैसे बाप दादा बच्चों को सर्विसेबल या अनन्य कहते हैं या कोई विशेष टाइटल देते हैं, तो उस टाइटल को मिसयूज कर लेते हैं, समझते हैं मैं तो ऐसा ही बन गया, मैं तो हूं ही ऐसा, ऐसे समझकर अपना आगे का पुरुषार्थ छोड़ देते हैं। इसको कहते हैं मिसयूज, अर्थात गलत प्रयोग। क्योंकि जो बाप दादा वरदान देते हैं उस वरदान को स्वयं के प्रति और सेवा के प्रति लगाना, यह है सही रीति से यूज करना, और अलबेले बन जाना यह है मिसयूज करना। अलबेले बन जाना यह है मिसयूज करना। तो ज्ञान का मिसयूज, वरदान का मिसयूज, सत्य का गलत प्रयोग क्या है? यहां बाबा ने दो उत्तर दिए हैं। पहला उत्तर है क्या सुना, कि जो भी टाइटल, जो भी वरदान, जो भी सम्मान, जो भी ज्ञान की बातें या जो श्रेष्ठ चीजें बताई जाती है उसको हम क्या समझ लेते हैं कि मैं ऐसा हूं ही और इसके बाद अभी काम करने की जरूरत नहीं है। तो ये सबसे पहला कारण है, टेकन फॉर ग्रांटेड इसको कहेंगे, ज्ञान का मिसयूज किस तरह किया जाता है, मिसयूज ऑफ नॉलेज कहो या वरदान कहो या सम्मान कहो या कुछ भी कहो, मिसयूज ऑफ ज्ञान। तो ज्ञान के मिसयूज की हम ऐसी 14 बातें देखेंगे, उसमें दो बातें बाबा ने कह दी है। पहली बात है टेकन फॉर ग्रांटेड। टेकन फॉर ग्रांटेड आना, ये मान लेना कि भाई है, जैसे एक सम्मान दिया गया तुम महान आत्मा हो, ठीक है ये मान लिया, परंतु उसके ऊपर काम नहीं कर रहे। क्या कहा बाबा ने, मैं तो ऐसा बन ही गया, मैं तो ऐसा हूं ही गया। इसका मतलब ये नहीं कि तुमको वरदान दे दिया मतलब वो हो गया, ऐसा नहीं है। आज कहा है साकार मुरली में सुस्त ना बनो, आज कहा है साकार मुरली में टाइम वेस्ट नहीं करो, आज कहा है साकार मुरली में कई बच्चे किस बात में अहंकार आ जाता है उनको, कि हमने कोई विकर्म नहीं किया, हम कोई विकर्म नहीं कर रहे, इसी बात का अहंकार आ जाता है, हमने कोई विकर्म नहीं किया। एक बड़ा ही पावरफुल स्टेटमेंट है साकार मुरली में आज, जैसे लौकिक बाप अपने बच्चों को जानता है वैसे पारलौकिक बाप भी हरेक बच्चे को जानता है, छिप नहीं सकेगा कोई। पारलौकिक बाप, ब्रह्मा की बात नहीं कर रहे हैं, शब्द सीधा जोड़ा हुआ है विशेषण, पारलौकिक अर्थात निराकार शिव। जैसे लौकिक बाप हर बच्चे को जानता है उसी तरह पारलौकिक बाप भी हरेक बच्चे को जानता है। ये नहीं कि वरदान मिल गया, सम्मान मिल गया, ज्ञान की कोई बात मिल गई तो हमने ये समझ लिया कि मैं तो वो हो ही गया, तुम महान आत्मा हो, तुम श्रेष्ठ आत्मा हो, तुम पूर्वज आत्मा हो, तुम स्वराज्य अधिकारी आत्मा हो, बहुत ऊंचे ऊंचे समान है। परंतु गलती क्या कर देते हैं, ये समझ लेते हैं कि मैं ये हूं। ये पहला। आगे बाद में बाबा ने कहा, ऐसा समझकर अपने आगे का पुरुषार्थ छोड़ देते हैं, इसको कहते हैं मिस यूज अर्थात गलत प्रयोग, क्योंकि बाप दादा जो वरदान देते उस वरदान को स्वयं के प्रति और सेवा के प्रति लगाना यह है सही रीति से यूज करना, और अलबेला बन जाना यह है मिस यूज। तो दूसरा कारण है, दूसरा मिस यूज क्या है, केयरलेसनेस, अलबेलापन, स्वयं के प्रति और सेवा के प्रति न लगाना, यह अलबेलापन। और फिर विकर्म बनते जाना। आज उदाहरण दिया है, जैसे बार बार जेल में जाने वाला व्यक्ति, सजा खाना जेल में जाना, सजा खाना जेल में जाना, ये उसकी आदत बन जाती है। अलबेलापन नहीं, सुस्त नहीं बनो, टाइम वेस्ट नहीं करो। अलबेलापन किस बात में, अलबेलापन उस वाक्य को, उस समान को, उस ज्ञान की पॉइंट को, उस तथ्य को, उस सत्य को, उस वरदान को अपने जीवन में, उस स्लोगन को अपने प्रति और सेवा के प्रति न लगाना, यह है ज्ञान का मिसयूज। तो ये तो बताए दो, अभी हम देखेंगे आगे के 12 क्या क्या हो सकता है ज्ञान के मिसयूज। ये हो गया इसमें आगे। हाँ, ये हो गया ईगो, ज्ञान का अहंकार, वरदान का अहंकार, इसको कहेंगे हम ईगो। माया अजगर कच्चा खा जाती है, आज कहा बाबा ने, माया अजगर क्या करती है, कच्चा खा जाती है। शैतान है माया। जरा भी अहंकार आया कि मुझे वरदान मिला है, ज्ञान का अहंकार, वरदान का अहंकार, समान का अहंकार, वैसे तो समान शब्द अहंकार के विरोध का है, परंतु उसका भी देहभान के रूप में लेकर अहंकार ले लेना, जैसे मुझे वरदान दिया है, तुमको थोड़ी दिया है, मुझे वरदान मिला हुआ है, ये डायरेक्ट वरदान दिया है बाबा ने स्टेज पर, वो भी उसी का अहंकार। तो ईगो, उसी के साथ जुड़ा हुआ ये है ज्ञान का मिसयूज, तीसरी पॉइंट। चौथी, इसी के साथ जुड़ी हुई दूसरों को बिलिटिल, अवमानना करना दूसरों की, दूसरों को कम समझना, दूसरों का अपमान करना, एक तो अपना अहंकार अभिमान और दूसरा अपमान, इसको कहेंगे अपमान, यहां पर इंसल्ट या कहो बिलिटिल अदर्स, कि हमको मिला है तुमको नहीं मिला है, और उस आधार से उनका अपमान करना, ये भी ज्ञान का क्या है, मिस यूज, या ये ज्ञान का उल्टी गंगा बहाना, ज्ञान की, श्रीमद की उल्टी गंगा बहाना। तो ये दो। उसके बाद में पांचवा, मॉडिफाई द ट्रुथ अर्थात सत्य को परिवर्तित करना, अर्थात अपनी सुविधा के अनुसार उसे ढाल लेना, सुविधाजनक श्रीमद उसको बना लेना, कहा तो कुछ और था पर अपने अनुसार उसको सेट करना, अपने अनुसार उसको सेट करना, उसको परिवर्तन करके यूज करना, कहा हुआ है स्वार्थवश कहो, सुविधाजनक कहो, या अपनी सुख के हिसाब से कहो, उस परिस्थिति के हिसाब से उसको अपने रीति से सेट करना, अपने कंफर्ट के हिसाब से, तो उसको कहेंगे सुविधाजनक श्रीमत, या फिर ये जो है मिसयूज है ज्ञान का, कि जहां पे हमने क्या कर दिया, मॉडिफाई किया उसको, उसका रूप परिवर्तन कर दिया। तो ये एक। अगला, उसको अतिशयोक्ति करना उसकी, एग्जेजरेट, जैसे कि बहुत ही बड़ा चढ़ाकर बोलना, जैसे उदाहरण सत्य की अतिशयोक्ति करके सुनाना, थोड़ी बाबा ने दो शब्द कहे पर वो बहुत सारे शब्दों में सुनाना। एक तो ये यह वरदान की बात है कि एक शब्द कहा होगा परंतु उसको बहुत ही स्वादिष्ट बनाकर परोसना दूसरों के सामने, उसकी अतिशयोक्ति करना, एग्जैगरेट करना, बड़ा चढ़ाकर बताना छोटी सी बात को। इसमें दो तीन चीजें कर सकते हैं, एक तो वरदान अगर मिला हुआ है उसको बड़ा चढ़ाकर बताना, एक तो सम्मान लेना, उस सम्मान को अज्ञानी आत्माओं के सामने अहंकार युक्त भाषा में बोलना, बड़ा चढ़ाकर, वो भी कि भगवान ने हमको कहा हुआ है। कहा हुआ बहुत अच्छी बात है पर यह ज्ञान हमको भगवान ने दिया हुआ है, तुमको थोड़ी दिया हुआ है भगवान ने, तुमको कोई अनुभव है क्या? मेरे पास 40 साल का अनुभव है, यह भी अहंकार है। हाँ, अनुभव भी हुआ, उसको भी अनुभव हुआ पाई पैसे का, सुना रहे हैं जैसे 1 करोड़ का है, छोटी सी बात पर छोटी सेवा इतनी, पर उसकी उसका जो विस्तार और वर्णन चालू है, महीने बीत गए अभी तक वर्णन चालू ही है, कहीं एक स्थान पर क्या चले गए कि दूसरी आत्माओं के लिए सजा हो गई, वो ये मिल गया मतलब अभी सुनाएगा, एक एक गली और एक एक रास्ते में क्या क्या देखा और क्या क्या किया, उनका वर्णन अभी तक चालू है। बहुत अतिशयोक्ति करना, ढिंडोरा पीटना अपना, ब्लो वंस ट्रम्पेट, क्या करना वो अलग है थोड़ा, तो एग्जैजरेट। उसके बाद है सप्रेस करना, सत्य को दबा देना। ये क्या है? कुछ बातों को बढ़ा चढ़ाकर बताना, कुछ बातों को दबा देना, कुछ बातों को रूपांतरित करना, ये 3 चीजें करते हैं सत्य के साथ हमेशा व्यक्ति। दबा देना अर्थात क्या? दबा देना अर्थात क्या? कोई चीज अगर अच्छी है तो ठीक है, जैसे हम बहुत अच्छे हैं और हमने बहुत अच्छी आज अमृत वेला रोज करते हैं, रोज अमृत वेला पर क्लास कराते हैं, आज हमने ही अमृत वेला मिस कर दिया, ठीक है, तब इतनी हिम्मत नहीं है बताने की कि आज मेरा लेट हो गया, तब इतना साहस नहीं है फिर बताने का कि आज मिस हो गया। उसका जो साहस था, उसकी जो शक्ति थी कि आज ऐसा ही करना चाहिए, तुम क्यों नहीं करते, परंतु आज जब खुद ही मिस कर दिया तब उसको अपनी कमजोरी को छुपा के रख दिया दूसरों से, या उस दिन, वो है सत्य को दबा देना। आज कहा ना बाबा को, बाबा को कौन से बच्चे प्रिय है, कौन सुन के आए मुरली, बाबा को कौन से बच्चे प्रिय है? सभी नहीं, सभी नहीं। माया बेईमानदार बनाती है, बाप को कौन से बच्चे प्रिय है? ईमानदार। और कौन से बच्चे प्रिय है? सपूत और आज्ञाकारी बच्चे प्रिय है। सपूत, आज्ञाकारी और ईमानदार जो होंगे वो बाबा को प्रिय है। झूठ यहां चल ना सके। उस दिन तो कहा ना, तुम अपना चार्ट भी झूठा देते हो, तो छिपाना, इसको कहेंगे छिपाना या दबाना या ढक लेना, अंदर रख देना, वो नहीं बताना। तो ये है 7वां। उसके बाद है 8वां, शब्दों को पकड़ लेना, केवल भाव को छोड़ देना। जिस भाव से कहा हुआ है उसको नहीं समझा, केवल शब्द पकड़ लिए। उदाहरण उदाहरण, संगम युग मौजो का युग है, शब्द पकड़ लिए बस, भाव को छोड़ दिया। पूरा संगम युग ही अमृत वेला है, शब्द को पकड़ लिया, भाव को छोड़ दिया, और केवल शब्द को पकड़ा है बस। सहज योगी जीवन है, भाव को छोड़ दिया। नहीं, ये एक अलग प्रकार के वाक्य है, और भी कुछ, केवल शब्दों को पकड़ लिया। जैसे 32 पकोड़े, उसने शब्दों को पकड़ लिया, इसका फायदा हुआ, इसका फायदा नहीं हुआ, एब्स्ट्रैक्ट माइंड है ये। और क्या, केवल भाव शब्द पकड़ लिए, भाव छूट गया। जिस भाव से वो कहा गया था वाक्य, वो भाव हम क्यों, हमारी समझ में ही नहीं आया बाबा ने किस भाव से कहा था। क्या हो सकता है, तुम्हें मेहनत करने की जरूरत नहीं, पर आज का है तुमको बहुत मेहनत करनी है। बाप से बच्चों की मेहनत देखी नहीं जाती, इसलिए हम मेहनत नहीं कर रहे क्योंकि बाबा को थोड़ी नाखुश कर सकते हैं। हम मेहनत करें, इनको दिल दुखता है, हम मेहनत करें, क्यों हम मेहनत करें? शब्दों को पकड़ लिया केवल, ये ऐसे शब्द चाहिए, ऐसे वाक्य कि जिसमें केवल शब्द जो दिखा उसको पकड़ लिया, पॉजिटिव वाले नहीं निगेटिव वाले, निगेटिव स्टेटमेंट्स, जैसे तुमको मेहनत नहीं करनी है ये, और वो जो बताए वो पॉजिटिव वाले स्टेटमेंट थे, जैसे सहज योगी जीवन, तो उसको पकड़ लिया, वो नहीं। निगेटिव स्टेटमेंट जो बाबा ने कहे, निगेटिव अर्थात कि बाप मेहनत नहीं देख सकते इसलिए हम मेहनत नहीं कर रहे, एक, और वो पॉजिटिव है। हाँ, जो सेवा तुम्हारी, जिस सेवा में तुम्हारी खुशी खत्म हो जाए वो सेवा ही छोड़ दो, इसलिए हमने सेवा ही छोड़ दी क्योंकि हमारी स्थिति खराब हो रही थी। ये है, शब्द पकड़ लिए, भाव को छोड़ दिया, और वो थोड़ा अलग प्रकार का है, निगेटिव स्टेटमेंट पर वैसे के वैसे पकड़ लिया। जैसे जहां वस्तु आवश्यकता होती वहां मांगो, फिर ये अर्थ होगा उसका। आज कहा ना, इवल बातें तुमको सुनना ही नहीं है, वो दूसरा है। तो इस तरह के जो भी स्टेटमेंट्स आएंगे वो इसमें आएंगे। अभी अगला है, भाव को छोड़ दिया, भाव को पकड़ लिया, शब्दों को छोड़ दिया, ये भी ज्ञान का मिसयूज है। इसमें क्या उदाहरण होगा? भाव को पकड़ा परंतु शब्दों को छोड़ दिया, भाव को ले लिया बस, परंतु जो शब्द थे उसमें वो छोड़ दिए। एक है, पहला बताया, शब्दों को पकड़ा, भाव को छोड़ दिया। अभी है, भाव को पकड़ा पर शब्दों को छोड़ दिया। शब्दों में बड़ी पावर थी, बड़े कठोर थे, पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया उसकी तरफ। ठीक है, ऐसे कह दिया, आज भी कहा 100 गुना 1000 गुना दंड मिलेगा, तो ये तो हमने छोड़ दिया। ठीक है, विकर्म तो सजा मिलेगी, पर ये हमने छोड़ दिया शब्दों को, ये छोड़ दिया कि 100 गुना क्या होती है? 100 गुना शब्द है वो, और भगवान के कहे हुए है शब्द 100 गुना, अर्थात एक व्यक्ति है जिसको एक पाप किया, चोरी की, एक कोड़ा लगाया, वो ज्ञान में आया, फिर चोरी की, अभी 100 कोड़े ये है शब्द को पकड़ना। तो भाव को ले लिया, खाली शब्दों को छोड़ दिया। तो बाबा भगवान कोई ऐसे ही थोड़ी शब्द कहता है, उसके शब्द मतलब सही है, वो सत्य है। हाँ, ये वाला उसमें आएगा, अमृत वेला, और जिसमें केवल भाव को ले लिया और शब्दों को छोड़ दिया, इसमें क्या है आशीष भाई? भाव को पकड़ा, शब्दों को छोड़ा, मिसयूज ज्ञान का। शिल्पा बेन, शब्दों को छोड़ दिया, शब्द महत्वपूर्ण थे पर केवल भाव को उठा लिया। लिट हाँ, तुम कोटों में कोई, कोई में भी कोई हो, इसको एकदम ही साधारण ले लिया, इसको बहुत साधारण ले लिया, पर है शब्दों को छोड़ दिया। ये शब्द बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल शब्द है। कोटों में कोई मतलब एक देश है जिसकी जनसंख्या है 10 लाख, फिर उसमें से पूरे देश में से एक ही व्यक्ति ज्ञान में आया, उसका कितना महत्व है? ऐसा महत्व समझ रहे क्या? नहीं, शब्दों को छोड़ दिया, शब्दों को के तरफ भी ध्यान देना है, शब्द भी बहुत पावरफुल है उसके। ये ज्ञान कैसा है आशीष भाई? आज की मुरली से क्या कहा आज बाबा ने? ये ज्ञान कैसा है? और ये ज्ञान बड़ा विचित्र है, रमणीक है और सिंपल है। शब्द छूट गया, इस शब्द भी महत्वपूर्ण है, शब्द भी नहीं छूटने चाहिए। सिंपल, विचित्र, रमणीक, शब्द भी बहुत महत्वपूर्ण है। भाव तो समझ लिया, ज्ञान बहुत अच्छा है, ये हो गया भाव, परंतु किन शब्दों में इनका अभिव्यक्ति हो रही है इस ज्ञान की, वो शब्द क्या है। जो मुरली है पूरी 18 जनवरी की, अभी जो संडे को चलने वाली है, उसमें ये जो दिन है उसके लिए 18 पॉइंट्स बताइए, एक ही दिन का वर्णन करने के लिए 18 चीजों से एक दिन का वर्णन किया गया है, 18 शब्दों से अलग अलग, वो क्या है। तो शब्दों को छोड़ लिया तो ये हो गया, ये भी ज्ञान का मिसयूज है। कौन कौन से बताएं? सबसे पहला तो ये मान लेना कि मैं हूं ही, बाबा ने मुझे कहा है तुम महान आत्मा हो, तुम भाग्यशाली आत्मा हो, टेकन फॉर ग्रांटेड, और फिर सब छोड़ दिया, आगे कुछ किया ही नहीं। दूसरा बताया अलवेलापन, तीसरा बताया अहंकार आ जाना, चौथा बताया दूसरों को कम समझना, अवमानना करना दूसरे की, कम आंखना दूसरों को, उसके बाद बताया उसको मॉडिफाई करना, परिवर्तन कर देना सत्य को अपनी सुविधा अनुसार, फिर बताया उसको बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ाकर बोलना, बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ाकर उसका वर्णन करना, उसके बाद बताया सप्रेस कर देना, उसको दबा देना, छिपा देना, उसके बाद बताया शब्दों को पकड़ लेना और भाव को छोड़ देना, उसके बाद बताया भाव को पकड़ लेना, शब्दों को छोड़ देना, उसके बाद अगला हाफ ट्रुथ, हाफ नॉलेज, हाफ नॉलेज को समझना, अध जल गगरी छलकत जाए, हाफ नॉलेज इज वर्स देन इग्नोरेंस। अभिमन्यु की जैसी स्थिति, अभिमन्यु ने ज्ञान तो सुना, चक्रव्यूह में जाना उसने सुना था, पर निकलना कैसे वो उसने नहीं सुना, उसी तरह ज्ञान तो आधी क्लास से उठ गया होगा या फिर बीच में आया होगा, लेट आया होगा, लेट आया होगा, क्या टॉपिक चल रहा है पता ही नहीं। तो हाफ नॉलेज, अर्ध ज्ञान बहुत खतरनाक है, अज्ञान से भी खतरनाक है। एक तो पता ही नहीं चाहिए, वो बहुत अच्छा है, जैसे वो डॉक्टर का उदाहरण दिया, इससे अच्छा तो बनो ही मत, बनो तो पूरा बनो, आधा बनो तो फिर मुश्किल है, इधर न उधर। तो हाफ कास्ट ब्राह्मीण नहीं बनना, फुल कास्ट ब्राह्मीण बनना, आधा बनो तो मुश्किल है। तो कोई भी ज्ञान संपूर्ण लेना है, आधा ज्ञान लिया तो वो अज्ञान से भी खतरनाक है। वैसे ही ये संपूर्ण जो चीजें है पवित्रता, तो उसको संपूर्ण रीति से समझो, उसके सारे आयाम क्या है। आधा समझा तो ना इधर के ना उधर के, ना तो ब्रह्मचर्य में का आनंद है, ना तो उधर संसार में जा रहे उसका भी आनंद नहीं। संसार के लोग कम से कम सुख तो है विकारों में, पर जो व्यक्ति ने ब्रह्मचर्य टेस्ट किया है उसको उधर उधर गया तो फ्रस्ट्रेशन आता है, उधर गया तो आत्मग्लानी होती है। संसार के लोगों को आत्मग्लानी नहीं होती है, वो कहते ठीक है चल रहा है उनका, पर ना इधर ना उधर, त्रिशंकु के जैसा बीच में लटके हुए हैं, उल्टा दुविधा में दो गई, न माया मिली न राम, माया भी गई, माया भी नहीं और राम भी नहीं, दोनों नहीं है बेचारे। तो ये इसको कहते हैं हाफ नॉलेज। अच्छा, ज्ञान में हाफ नॉलेज अर्थात क्या? हाफ नॉलेज का उदाहरण कि किसी ने हाफ नॉलेज ले ली है, हाफ नॉलेज का उदाहरण वो सब हो गया, शब्दों को पकड़ना हो गया। हाफ नॉलेज अर्थात क्या? हाफ नॉलेज अर्थात क्या? मुरली ज्ञान को आधा 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 समझना अर्थात क्या? उदाहरण डबल स्नान, अच्छा स्थूल नहाते रहेंगे हाफ नॉलेज, हाफ नॉलेज, थोड़ी चीज पता है, पूरी चीजें पता नहीं है उसके बारे में। हाँ, जैसे ये इस देह की तरफ तुमको ध्यान नहीं देना है, अब ये उसने सुन लिया, ये देह जैसे कल जो बातें बताई थी एकदम ही देह को ये कर दिया, पर उसी भगवान ने ये भी कहा है जो बच्चे अपनी ही गलती की वजह से बार बार बीमार पड़ते हैं बाप दादा उन्हें ज्ञानी योगी आत्मा नहीं कहते। अव्यक्त महावाक्य है पापा के, जो बच्चे अपनी ही गलती से बार बार बीमार पड़ते हैं वो उन्हें बाप दादा ज्ञानी तू आत्मा नहीं कहते, या फिर अपने शरीर को ही चलाना नहीं आया तो विश्व को क्या चलाओगे। तो ये हाफ नॉलेज, सहज राजयोग, और हाफ नॉलेज का एग्जाम्पल अर्धज्ञान। हाफ नॉलेज में यह भी आता है कि बाबा ने कहा किसी के साथ कार्मिक अकाउंट नहीं बनाने। अब दूसरा बीमार पड़ा है, हम कहेंगे हम उसकी सेवा नहीं करेंगे, सेवा करेंगे तो अपने हिसाब किताब बन जाएंगे, हम क्यों करें सेवा, हाँ शरीर को टच नहीं करो, बाबा की श्रीमत है, हम इसको हाथ लगाएंगे तो हम कैसे हाथ लगाए इसको, बाबा ने तो कहा है। ये है हाफ नॉलेज, इधर मौन व्रत ही धारण कर रखा है, इधर इमरजेंसी चालू है। बहुत साल पहले हॉस्पिटल में एक बहन आई थी डॉक्टर, उसका ड्यूटी आवर्स में मौन रहता था। सिस्टर आके कहती थी डॉक्टर पेशेंट देखो, वो कहती थी श मौन। ये हाफ नॉलेज हो गया ना, हाँ मौन। तो ये तो हम तो ओपीडी में रहते हैं, ट्रैफिक कंट्रोल चलता है और सामने पेशेंट आके बैठ जाता है और बात करने लगता है, तो उसको हम क्या कहें, मौन, उसको क्या पता, उसको थोड़ी लेना देना है कुछ तुम्हारे ट्रैफिक कंट्रोल से, और क्या उसको अपना पेशेंट है उसको देखना है, तो वहां हम ये नहीं कह सकते। हाँ तो कोई इसमें ऐसा कट्टरवादी नहीं बन जाना है हर चीज में, क्योंकि जहां पर जनसंपर्क हो रहा है, हाँ नहीं तो रास्ते के ट्रैफिक में ही हम खड़े हो जाएंगे। तो ये हाफ नॉलेज हो गया, तो हाफ नॉलेज नहीं होनी चाहिए। हाँ किसी की पर्सनल चीज उठाना और कहना बाबा का है सब, और फिर दूसरा कहे मेरा क्यों लिया, तो बोला उसको समझाना मेरा मेरा छोड़ो, बाबा की ट्रेन है। वो एक होता है ना, एक साधु ट्रेन में बैठ जाता है तो टीसी आता है, कहता है टिकट कहाँ जा रहे हो, वो कहता है मैं राम जन्मभूमि अयोध्या, तो बोलते है टिकट, तो बोलते टिकट तो नहीं है, तो बोलते चलो मेरे साथ, तो साधु बोलते है कहाँ, वो बोलते है चलो कृष्ण जन्मभूमि। तो ये है ज्ञान का मिसयूज। अगला पॉइंट है तोता रटन, पैरट लाइक रीडिंग, रट लेना ज्ञान की पॉइंट्स को, खाली रटा हुआ है बस, खाली रटते रहना परंतु करना कुछ नहीं, खाली रटन, दैट इज नोन एज पैरट लाइक लर्न बाय हार्ट। उदाहरण एक बाप दूसरा ना कोई, बोल रहे परंतु कईयों से आ सकती है, वैराग हो जाना चाहिए संसार से परंतु वैराग के कोई चिन्ह सामने दिखाई नहीं देते। कुछ भी दिखाई नहीं देते, और बिना वैराग के कभी कोई आंतरिक परिवर्तन नहीं आ सकता। परिवर्तन यदि लाना है तो वैराग चाहिए, और पैरट लाइक, हाँ ये सब बाबा का है, और पैरट लाइक तोता रटन, गलती करते रहना, बाबा को माफी मांगते रहना, कुटिया में जाने का खत लिखते रहना, माफी का माफीनामा, ये लो माफी, माफी तो मांग ली ना, अब हल्का लग रहा है, हल्का लग रहा है तो चलो विकर्म करने के लिए तैयारी हो गई, नए विकर्म की तैयारी, अपने बात मत समझ, खाली तोता रटन, उसका अर्थ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुरली में इतने कहावतें, उतने मुहावरे हैं कि वो सबके सभी ब्राह्मणों को इतने याद हो गए हो कि उसका अर्थ और सोच विचार करना ही बंद हो गया है। बाबा करा रहा है, हम निमित्त हैं, अंतर्मुखी सदा सुखी, अंतर्मुखता की गुफा में बैठ जाओ, ये इतना सारे, ये इसका अर्थ अंदर कुछ भी नहीं आ रहा है, खाली शब्द रटन हो गए, सारे शब्द रटे हुए हैं। भ्रुकुटी के बीच चमकता एक अजब अजब सितारा, हम सो सो हम तत्वम, ये संडे की मुरली में वरदान बाबा ने दिया है एक जगह, और इतना ज्ञान दे दिया है, ज्ञान बहुत दिया है और बहुत गहरा ज्ञान दिया है, आज भी कहा है बूंद से चालू किया है, और हम तो है ही बाबा के। तो ये सारा जो है तोता रटन हो गया है, बहुत सारा तोता रटन। सारा कोर्स जो भी करा रहे वो भी तोता रटन जैसा कोर्स चल रहा है। हाँ, कोर्स करेंगे तो तोता रटन। तो ये है ज्ञान का मिसयूज। उसके बाद है कि ज्ञान अव्यक्त है, उसको व्यक्त में समझना। ज्ञान बेहद का है, उसको हद में समझना। क्योंकि हम यदि हद में हैं तो उस बेहद के ज्ञान को हम नहीं समझ पाते। हम यदि व्यक्त में हैं तो उस अव्यक्त ज्ञान को कैसे समझ पाएंगे? अंतर कितना है? इतना ज्यादा अंतर है, वो इधर मैं इधर, कैसे जान पाऊंगा? मुश्किल है ये जान पाना। इसलिए ये भी मिसयूज हो गया एक रीति से ज्ञान का, कि अव्यक्त ज्ञान को व्यक्त बनाना, बेहद के ज्ञान को हद का बना देना। हद का ज्ञान, मेरा एरिया तुम्हारा एरिया, मेरे स्टूडेंट तुम्हारे स्टूडेंट, जहां हदें है वहां टकराव है, जहां हदें है वहां टकराव है, जहां बेहद है वहां कोई टकराव नहीं है, वो निर्विघ्न। टकराव अभी क्यों है? क्योंकि हदों में जी रहे व्यक्ति, हदों में जी रहा है हर इंसान, इसलिए उसके जीवन में संघर्ष है, टकराव है। थोड़ा सा ऊपर उठ जाए तो टकराव नहीं रहेगा, टकराव समाप्त हो जाएगा। तो बेहद के ज्ञान को हद में समझना, अव्यक्त ज्ञान को व्यक्त के रूप में समझना। उसके बाद में एक दूसरी और चीज है यहां पर मिसयूज ज्ञान का। खाली थियोरेटिकल ज्ञान है, प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं किया है। ओनली थियरी, नो प्रैक्टिकल। उदाहरण, थियरी सब पता है पर प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं। जैसे तुमको संस्कार मिलन की रास करनी है, इस पर क्लास करा के आना, ठीक है, और डिपार्टमेंट जाके झगड़ा करना एंगर मैनेजमेंट पे क्लास कराओ, ठीक है, और फिर भयंकर क्रोध करो, ऐसा क्रोध कि सामने वाला थर थर कांपने लगे अमृत वेले पर क्लास करो और खुद लेट उठो, ऐसा अनुभव हो कि आंख में अमृत वेला, जरा भी रिंचक मात्र भी नींद ना हो, आंख ऐसी भी ना हो जाए, ऐसी हो एक पल के लिए खाली, पर लंबा समय नहीं, और फिर उठना, अर्थात वो नींद थी। अपने अमृत वेले के नींद का अच्छा डायग्नोसिस होना चाहिए आशीष भाई। जब तक वो डायग्नोसिस नहीं होगा, निदान नहीं होगा, नींद आती रहेगी। और जब तक ये स्टैंप नहीं लगाओगे कि हाँ मुझे नींद आती है, निदान, उसके बाद ही इलाज चालू होगा। जब तक बीमारी छुपाओगे तो नींद चालू रहेगी। खुली आंखों से नींद या बंद आंखों से नींद, दोनों ही वर्जित है। नींद समाप्त हो जाए, नींद यदि आ रही है तो शायद नींद कम ले रहा है व्यक्ति, इसका मतलब थोड़ा जल्दी सोना पड़ेगा, फिर उसको कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ ऐसा भी है क्योंकि अमृत वेला नींद आने का संबंध या अमृत वेला उठने का संबंध कितना घंटा नींद किया उससे है ही नहीं, मन की स्थिति से संबंध है। कोई सोचता है मैं आज थोड़ा जल्दी सो जाता हूं, 9 बजे सो गया और फिर भी उठा 4 बजे, जबकि उसने सोचा था आज थोड़ा जल्दी उठूंगा, और फिर एक दिन इतनी सेवाएं की 11 बज गए, सोचा कि थोड़ा अभी देखता हूं तो नींद खुल गई 2:30 बजे। क्योंकि संबंध उठने का और क्वालिटी का, कितने बजे सो रहे उससे नहीं है, किस बजे से नहीं है, किस स्थिति से संबंध है। और केवल रात के सोने की स्थिति नहीं, सारे दिन के जो सूक्ष्म संकल्प चल रहे हैं उनसे है, जो विकर्म हो रहे छोटे छोटे उनसे है। इसके लिए आज कहा ना, अहंकार कहा बाबा ने, कई कई बच्चों को अहंकार आता है कि हम तो विकर्म करते ही नहीं है, हमसे विकर्म, अरे बाबा ने कहा विकर्म तो होते ही रहते। हाँ सभी से देखो, एक एक लाइन जो है ना मुरली का इतना पावरफुल होता है। तो केवल थियरी को समझ लेना, प्रैक्टिकल नहीं करना। उसके बाद में लास्ट पॉइंट 14वां, जो भी ज्ञान दिया हुआ है उस ज्ञान की एक एक बात पर काम न करना, अपने संस्कारों पर काम न करना, ये मिसयूज है। काम करना अर्थात जैसे मुरली में आया आज, जैसे तुम्हें टाइम वेस्ट नहीं करना है, मुरली में एक जगह है, बच्चे तुम्हें टाइम वेस्ट नहीं करना है, इस पर क्लास भी करा दी, डायरी में पॉइंट भी लिख ली, पर सारी दिनचर्या में टाइम वेस्ट हुआ, कहां हुआ वो स्वयं खुद ही देखे हर एक। और टाइम वेस्ट का संबंध केवल स्थूल कर्मों से नहीं है, मनसा से है। मनसा किस चिंतन में रहा, श्रेष्ठ चिंतन में रहा या व्यर्थ में रहा? हम मनसा चिंतन के टाइम को टाइम वेस्ट नहीं समझते, बाहर का मोबाइल और टीवी और इंटरनेट और ये सब को टाइम वेस्ट समझते हैं, या बातें इधर उधर की, ये खाली टाइम वेस्ट नहीं है, टाइम वेस्ट इधर है। समय प्रबंधन यहां होना चाहिए पहले मन में। तो ऐसी ये 14 बातें हैं, किसकी? ज्ञान के मिसयूज की। फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। सबसे पहला, दो बातें मुरली में बाबा ने बताई है, 12 निकाली गई है। पहला, टेकन फॉर ग्रांटेड, मैं तो हुई ऐसा, बाबा ने कह दिया काम पूरा हुआ। दूसरा, अलबेलापन। तीसरा, अहंकार। चौथा, दूसरों को कम समझना। पांचवा, सत्य को मॉडिफाई करना, सत्य को सप्रेस करना, और सत्य को एग्जैजरेट करना, बड़ा चढ़ाकर बताना। उसके बाद में केवल भाव को छोड़ देना, शब्दों को पकड़ लेना। फिर भाव, वो बोल दिया एग्जैजरेट, शब्दों को पकड़ना, भाव को छोड़ देना, भाव को पकड़ना, शब्दों को छोड़ देना, या दोनों को छोड़ देना पर दोनों को भी नहीं छोड़ना है, भाव को भी पकड़ना है, शब्दों को भी पकड़ना है। ऐसा नहीं कि केवल भाव को पकड़ लिया और शब्द छोड़ दिया और शब्दों को पकड़ा भाव, दोनों को पकड़ना है। उसके बाद में नेक्स्ट, अर्ध ज्ञान खतरनाक है, हाफ नॉलेज इज वर्स देन डेंजरस, खौफनाक है। उसके बाद पैरट रीडिंग, तोता रटन, बस रट लिया है और कर कुछ नहीं रहे, बस वही वही दोहरा रहे, सब लोग दोहरा रहे, सारा का सारा, जिसको भी जो भी क्लास है उसमें यही सारी बातें रिपीट रिपीट होती रहती है। बाप समान बनना है, बाप समान बनना है, बाप समान बनना है, उसका वो गहरा मीनिंग एक चला गया है। लक्ष्मी नारायण बनना है, अरे वो लक्ष्मी नारायण स्वामी क्या कहता है वो तो सुनो पहले तो केवल अंतर्मुखी, आत्माभिमानी स्थिति, अशरीरी अवस्था, अव्यक्त स्थिति, सेम 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 बोला जा रहा है खाली। रिगार्ड देने का रिकॉर्ड रखना है, बोला जा रहा है खाली, करना कुछ नहीं, कर कुछ नहीं रहे, रिकॉर्ड देगी नहीं, रिकॉर्ड पे तो कुंडली मारकर बैठे हुए अगला, अव्यक्त को व्यक्त में समझना, या बेहद को हद में समझने की प्रयत्न करना, कभी नहीं समझ में आएगा वो, शब्द भी समझ में आएंगे, शायद भाव भी थोड़ा समझ में आ जाएगा, पर वो कहा हुआ अव्यक्त से है, अव्यक्त तो अव्यक्त की स्थिति में ही समझा जा सकता है। अगला, नो प्रैक्टिकल, खाली थियरी, खाली थियरी 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 भर के रखे है, सारी ज्ञान की पॉइंट्स डायरियों में बहुत सारी भरी है, पर उसका प्रैक्टिकल कुछ भी यूज नहीं कर रहे, एप्लीकेशन कुछ भी नहीं कर रहे उसका। सब पता है, स्विमिंग पर पूरी पीएचडी कर ली, पर पानी में नहीं उतरेंगे जब तक स्विमिंग सीखेंगे नहीं तब तक। और उसका तर्क भी राइट है एक रीति से, एक व्यक्ति पानी में सीखने गया और वहां पैर फिसल गया और गिर गया पानी में, बड़ी मुश्किल से उसको बाहर निकाला, उसके बाद उसने प्रतिज्ञा की अब जब तक सीखूंगा नहीं तैरना पानी में नहीं उतरूंगा, और एक रीति से वो राइट भी है, उसका तर्क कोई एकदम ही तर्कहीन नहीं है, वो उसका सही है कि जब तक सीखेंगे नहीं तो पानी में कैसे उतरेंगे, तो वो भी राइट है एक रीति से, परंतु सत्य ऐसा नहीं है जीवन का, उतरना पड़ेगा तो ही सीखा जाएगा। तो उसके बाद नॉट वर्किंग ऑन इट, उसके ऊपर काम नहीं करना, खाली समझ लिया, सब कुछ कर लिया, पर अब उसके ऊपर काम करना वो एक महत्वपूर्ण चीज है, वो छूटी हुई है। तो ज्ञान की चोरी करना अच्छी बात है एक रीति से, ज्ञान की नकल करना अच्छी बात है। जो 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 जहां से ले सको ज्ञान वो लो, मधुमक्खी की जैसे सब जगह से रस लो, वो अच्छा है। ज्ञान किसी की अपनी बपोती ये नहीं है, किसी की भी, वो तो कहां से भी ले सकते हो आप, कुछ भी कहां से भी लिया जा सकता है, क्योंकि वो जो दूसरी आत्मा है उन्होंने दूसरी आत्मा से लिया है, उसने किसी और आत्मा से लिया है, उसने किसी और से लिया है, हर एक ने अलग अलग रीति से लिया है। कोई भी ज्ञान किसी की भी अपनी वैयक्तिक संपत्ति नहीं है, ज्ञान कहीं से भी लिया जा सकता है, किसी से भी लिया जा सकता है। आप उसको अपने रीति से मॉडिफाई कर सकते हो, अपने रीति से परिवर्तन कर सकते हो। हाँ वो चलो ठीक है वो भी करो, उसमें भी कोई नुकसान नहीं है, करे भले, क्या फर्क पड़ रहा है। हाँ कुछ तो होगा उसमें, कोई लिखे कहीं से ले ले अपने नाम से बताए चलेगा, क्योंकि ज्ञान तो प्रकाश है, बुद्धि तो कपाट खुलेंगे। तो क्या कर बोला लास्ट पॉइंट, काम करना है उस पर, वर्क करना है, उसके सिवा ये ज्ञान धारण नहीं होता है। तो ऐसी ये 14 बातें हैं ज्ञान के मिसयूज की। ओम शांति।